ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए रक्षा क्षेत्र में नए शिखर छूता भारत विषय पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक एयर वॉइस मार्शल एसजे नानोतकर और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
भारत अब केवल एक विकासशील देश नहीं है, बल्कि दुनिया भर में तकनीक की जो महाशक्तियां हैं उनकी श्रेणी में भारत शामिल होता जा रहा है। जहां एक तरफ सरकार की जो कई नीतियां हैं, जैसे आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, ये एक तरफ भारत की तकनीकी क्षमता को बढ़ा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जहां हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट और दूसरी तरफ कई ऐसे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं जिससे कि भारत की एक क्षमता और बढ़ती जा रही है। खासतौर पर हमने रक्षा क्षेत्र में देखा है कि भारत ने बड़ी तरक्की की है। आज हम जिस पर विस्तार से बात भी करने वाले हैं और हम बात करेंगे कि हाल ही में भारत ने रक्षा क्षेत्र में क्या कुछ उपलब्धियां हासिल की है, किस तरह से भारत जो बड़ी महाशक्तियां हैं उनकी श्रेणी में अब शामिल होता जा रहा है। हमारे साथ चर्चा में शामिल है एयर वाइस मार्शल एसजे ननुतकर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।
बहुत शुक्रिया कमल।
ननुतकर साहब, हम सुनते आए थे कि अमेरिका, चीन, रूस, इस तरह के देशों ने तमाम रक्षा के क्षेत्र में तकनीकों को ईजाद किया है, लेकिन भारत ने हाल ही में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तकनीकी आयाम हासिल किए हैं। जैसे कि अगर हम जिक्र करना चाहें तो हाल ही में लेजर आधारित डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जो फिक्स्ड विंग स्वान ड्रोन को निष्क्रिय करने में एक बहुत बड़ी क्षमता का एक उदाहरण है। दूसरी तरफ हाल ही में ही भारत ने एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट तकनीक का भी परीक्षण शुरू किया, जो हाइपरसोनिक मिसाइल की दृष्टि से बहुत अहम प्रयोग है। तो इस तरह के प्रयोग किस तरह से भारत को इन महाशक्तियों की श्रेणी में लाने में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए हैं।
कमल, अगर हम देखें तो पिछले 70-75 साल में अगर भारत का विकास देखें तो हम काफी आगे बढ़े हैं और देशों की तुलना में जो डेवलपिंग नेशंस कहे जाते हैं। और ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट की जो नीतियां आपने, जिनका जिक्र किया आपने, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की वजह से लोगों को प्रोत्साहन मिला है और इन चीजों में भी उल्लास देखने को मिला है प्रगति में हमारे। और आपने जिन चीजों के बारे में बात करी है उसके अलावा और भी कई चीजें हैं जिसमें हमने काफी प्रगति की है। जैसे हमने एटैक गन बनाई है, अभी आपने प्राइवेट पार्टनरशिप का जिक्र किया, तो जैसे कि L&T, टाटा और भारत फोर्ज जैसी कंपनियों ने साथ में आके DRDO के साथ काम करके एटैक गन बनाई है, जो विश्व में उस तरह की गन बड़ी कम है, बड़ी कम देश है जो ये चीजें बना सकते हैं। तो ये हो गई हमारी प्रगति की बात। और आपने जो वेपन्स के बारे में जिक्र किया, इसके ऊपर पिछले 10-15 साल से काम चल रहा था और हमें जाकर अभी सफलता मिली है। अभी तो हम इनिशियल स्टेजेस में हैं, जहां पर हमको जो जहां तक जाना है उसकी फर्स्ट स्टेज मैं कहूंगा हमने हासिल की है, क्योंकि अभी पावर जनरेशन, हायर पावर जनरेशन और लॉन्गर रेंजेस के बारे में हमको सोचना है। उसके पहले अगर आप रिकॉल करें, एक 8-10 साल पहले हमने सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता भी दिखाई थी
जी, 2019 में ये प्रयोग हुआ था।
बिल्कुल बिल्कुल, तो इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप देखे जाए तो ये 10-12-15-20 साल का जो तजुर्बा है हमारे साइंटिस्ट का, उसको आगे बढ़ाते हुए और अभी क्योंकि आत्मनिर्भरता के लिए कुछ कदम ऐसे उठाए हैं नीतियों के कारण, जिसकी वजह से उनको भी प्रोत्साहन मिला है, पैसे बजट में एलोकेट किए हैं इन प्रोग्राम्स के लिए, तो उसकी वजह से काफी जोर से काम चल रहा है। आपने जिक्र किया हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए जो इंजन लगता है उसके बारे में, तो ये सारी चीजें सक्सेस स्टोरी है। और जैसे कि हमारा एरो इंजन के बारे में अभी काफी उसमें प्रगति हासिल करना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि सारे प्रोग्राम जो है एविएशन सेक्टर में, एरोस्पेस सेक्टर में, वो ऐसी टेक्नोलॉजी के कारण पीछे पड़े हुए हैं। ये दोनों की जिक्र करना चाहूंगा आपके माध्यम से मैं।
बिल्कुल, तो हमारा जो पूरा वेपन सिस्टम है उसमें जिस तरह से हम आधुनिक तकनीकों को ले रहे हैं, वो हमारी जो सैन्य क्षमता है उसमें किस तरह से बढ़ोतरी कर रहे हैं। जैसे कि एक उदाहरण हम अगर यहां पर लेना चाहें, 2024 में भारत ने अग्निवी में जो एक मिसाइल है उसका सफल परीक्षण किया था, जिसमें हमारे पास एक टेक्नोलॉजी आई थी जिसका आप, मैं चाहूंगा एक्सप्लेन भी करें, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल। तो इस तरह की तकनीकें जब आ रही हैं हमारे पास, मिसाइल सिस्टम को किस तरह से बेहतर कर रही हैं और कैसे हमारी जो सैन्य क्षमता है इससे और ज्यादा आगे आने वाले समय में बढ़ेगी जब सेना में ये सब चीजें शामिल होंगे।
MIRV का जिक्र किया आपने, जो फिर से मैं दोहराना चाहूंगा कि ये बड़े सालों की मेहनत है हमारे साइंटिस्ट की और अभी उसमें सफलता पाई है हमने, और इसकी वजह से हम एलीट जो देश है, 5-6 देश है जिनके पास ये इस तरह की क्षमता है, उनके साथ बैठने के लिए सक्षम हुए हैं। और देखो, इस तरह के जो वेपन्स होते हैं वो स्ट्रेटेजिक लेवल पे यूटिलाइज होते हैं, बहुत बड़ा डिटरेंट होता है वो, क्योंकि कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल, अभी जो आपने जिक्र किया उस जिस मिसाइल का, वो मिसाइल ही नहीं, हमने टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल भी बनाई है, तो एक रेंज होता है जो हमारी सेनाएं हैं वो चाहती है कि पूरा स्पेक्ट्रम कवर करे। ये नहीं है कि कुछ चीजें हमारे पास हैं और कुछ नहीं है तो हम दूसरे के ऊपर निर्भर है कि सप्लाई मिले नहीं मिले, युद्ध के समय या कठिन परिस्थितियों में उन चीजों की हमारे पास अवेलेबिलिटी हो ना हो, तो एक पूरा युद्ध के लिए पूरा स्पेक्ट्रम होता है जो कवर करना है, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल और जो प्रिसीजन वेपन्स की रिक्वायरमेंट है उसके लिए जो काम हो रहा है। मैं ये कहूंगा कि कई चीजों में हमने सफलता पाई है और कई चीजों में हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है, क्योंकि हमारे पास सीकर की टेक्नोलॉजी जितनी चाहिए उतनी एडवांस नहीं है, काम चल रहा है। तो जब तक सीकर्स अच्छे नहीं होंगे, अभी जैसे कि जो एडवांस नेशंस है वो मल्टीपल सीकर के वेपन्स यूज करते हैं, क्योंकि कोई भी मिसाइल हो या कोई भी प्रिसीजन वेपन हो उसको फाइनल फेज में उसको टारगेट सीकिंग की क्षमता चाहिए, और ये युद्ध में हमेशा ये कैट एंड माउस, बिल्ली चूहे का गेम चलता है कि आप अगर कुछ चीज बनाओ तो अगला नेशन है आपके दुश्मन के पास, वो उसको काउंटर करने की कोशिश करेंगे, तो वो काउंटर जब करते हैं तो उससे उसको काउंटर मेजर आपके पास होना जरूरी है आपके वेपन सिस्टम में। ये चीजें हमेशा चलती रहेगी, लेकिन उसके साथ रहने के लिए जो चीजें चाहिए, जो बेसिक्स चाहिए अपने पास, उसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने कई जैसे वॉरहेड्स टेक्नोलॉजी में हम काफी एडवांस पहुंचे हुए हैं, हमारी जो नीतियां के साथ साथ हमारे जो साइंटिस्ट ने DRDO में या प्राइवेट सेक्टर में भी अभी काम चल रहा है इनके ऊपर, तो वॉरहेड टेक्नोलॉजी में हम काफी आगे बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ सीकर टेक्नोलॉजी में हमको आगे बढ़ना जरूरी है, उसके ऊपर काम करना और उसके लिए जो रिक्वायर्ड है उसको आगे लाना जरूरी है। हमारे प्रोपल्शन सिस्टम्स, जैसे हम इसरो रॉकेट्स भेज रहा है अंतरिक्ष में, अगर हमारे जो छोटे रॉकेट्स है, जो जैसे हमें पिनाका, अभी आपने सुना होगा कि फ्रांस भी इंटरेस्ट दिखा रहा है पिनाका और हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो पिनाका जैसे रॉकेट्स हमने बनाए हैं, लेकिन हमारे पास जो हेलीकॉप्टर के किट्स है 57 mm 60 70 mm रॉकेट्स, वो हम अभी भी खरीद रहे हैं बाहर से, उनको भी हमारे काबू में लाना जरूरी है। और अभी भी जो हम प्रोडक्शन की बात करेंगे, अगर हिंदुस्तान में प्रोडक्शन करने की क्षमता अभी बना रहे हैं, लेकिन वो मेक इन इंडिया के अंडर है और वो फॉरेन हेल्प के साथ होगा, लेकिन उन चीजों में भी हमारे यहाँ वो क्षमता हमारे में होनी चाहिए पूरी। जैसे नेवी ने काफी एडवांसमेंट करी हुई है शिप बिल्डिंग में।
यहाँ पर आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे DRDO का आपने जिक्र किया, इसी तरह से हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ जैसे हाल ही में हल्के लड़ाकू जो हेलीकॉप्टर है उनका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, ऐसे ही तमाम जो अब कई उत्पादनों की हम और बढ़ रहे हैं कि हम सिर्फ भारत में जो चीजें बन सकती हैं उनको बनाते हुए हम निर्यात भी शुरू कर सकें, जिससे कि जो हमारे पास तकनीक उपलब्ध है वो हमारी सेना के लिए भी फायदेमंद हो और हम कुछ देशों में अपनी तकनीक का प्रदर्शन करते हैं उनको भी एक्सपोर्ट कर सकें। तो किस तरह से ये एजेंसियां बड़ी भूमिका निभा रही हैं, DRDO और HAL, और किस तरह से इनकी क्षमता को पहचानते हुए हम एक बड़े उत्पादन की ओर बढ़ सकते हैं, और कुछ उत्पादन तो हमने अच्छा खासा किया भी है, क्योंकि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें उत्पादन के एक सकारात्मक आंकड़े पिछले 2-3 साल में हमें देखने को मिले हैं।
हमने देखा है कि एक्सपोर्ट के आंकड़े बढ़े हैं पिछले 4-5 साल में। आपने जो LCH का लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का जिक्र किया, हम उसके पहले ALH बनाए हैं, HAL ने ALH बनाया है। अगर हम वर्ल्ड क्लास चीजें बनाने की क्षमता लाएंगे तो हमारे पास मार्केट की कमी नहीं होगी, क्योंकि बहुत कम देश है। एक एडवांटेज हमको ये है कि हम लो कॉस्ट में प्रोड्यूस कर सकेंगे, क्योंकि वो हमारी एक स्ट्रेंथ है हमारे नेशन की। तो अगर हम कॉम्पीट करना चाहते हैं तो कॉस्टिंग हम कंट्रोल में रख सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी जो यूज कर रहे हैं वो हाई एंड टेक्नोलॉजी यूज करने की जरूरत है, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन, ये चीजों पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। अभी दूसरी बात यह है कि हम अभी तक क्या कर रहे थे कि DRDO या PSUs ही सब कुछ बनाने की कोशिश कर रहे थे, अभी प्राइवेट प्लेयर्स आ गए हैं, तो समवेयर डाउन द लाइन थोड़ी सी नीतियां हमको ये करनी पड़ेगी कि TOTs प्राइवेट प्लेयर्स को दे दें और उनको शुरू से आपके साथ रखें जब डिजाइन डेवलपमेंट फेज में हो। हमारे पास स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है उसको मेंटेन करके रखें और उस हिसाब से हम और एक्सपोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जरूरतें हैं और हमारे पास काबिलियत है, लेकिन उस काबिलियत को थोड़ा अच्छे से शेप देने की जरूरत है मेरे ख्याल में जी। और उसी से हमारा एक्सपोर्ट सही मायने में बढ़ेगा और उसका हमें जरूर फायदा होना चाहिए एज अ नेशन, एज अ कंट्री, एज कंपनीज. सो दैट इज व्हाई इस वजह से मैं कहूंगा कि ये सारी चीजें हमको होलिस्टिकली देखनी चाहिए.
आखिर में नरोत्कर साहब आपसे मैं समझना चाहूंगा, 2019 के आपने एक मिशन का जिक्र किया था जिसमें भारत ने जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल है उसके तहत एक सफल परीक्षण किया था जिसमें एक सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में हमने नष्ट कर दिया था. तो ये जो अंतरिक्ष का स्पेस वॉरफेयर है उसके लिहाज से एक भारत की एक बहुत बड़ी क्षमता का प्रदर्शन था. आप थोड़ा समझाना चाहेंगे कि आने वाले समय को देखते हुए ये प्रयोग कितना महत्वपूर्ण था और अगर स्पेस वॉरफेयर की हम बात करते हैं तो किस तरह का ये समय होने वाला है, मतलब एक अनुमान या एक विश्लेषण आपका क्या कहता है और ऐसे में अगर हम इस तरह की क्षमता हासिल करते हैं तो कितनी बड़ी ये एक हमारे लिए ताकत हो सकती है.
पिछले 21 साल से एयरफोर्स कह रही है कि एयर पार्क के बारे में सिर्फ बात नहीं करो, एरोस्पेस पार्क के बारे में बात करो. तो ये रियलिटी हमने महसूस करी जब चाइनीज एंटी सैटेलाइट मिशन और अमेरिकन एंटी सैटेलाइट मिशन वगैरह लॉन्च हुए और उसी के साथ साथ हमारी क्षमता भी, जैसे आपने बताया कि 2019 में हमने वो क्षमता एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया कि भाई ये कैपेबिलिटी हमारे पास है. सो ये एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप था हमारी तरफ से और ये कैपेबिलिटी हमारे पास है अभी. तो ये हुई कैपेबिलिटी की बात. ये सारी चीजें अब हमारे अगल बगल में हो रही है. हाल ही में उन्होंने प्रयोग किया है कि सैटेलाइट के मैनूवर करके वो यानी स्पेस में कॉम्बैट हो रहा है, स्पेस कॉम्बैट की बात कर रहे हैं और इमेजिनेशन के बाहर नहीं है क्योंकि हम जब सारी चीजें देखते हैं कि स्पेस में क्या हो रहा है. अभी प्राइवेट प्लेयर्स अभी सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स कौन लॉन्च कर रहा है? अमेरिका लॉन्च कर रहा है और चाइना लॉन्च कर रहा है और हम लोग और बाकी देश जो क्षमता रखते हैं वो थोड़े थोड़े अपने आइदर पीसफुल यूटिलाइजेशन के लिए या मिलिट्री यूटिलाइजेशन के लिए फॉर सर्विलेंस पर्पस, फॉर कम्युनिकेशन पर्पस लॉन्च कर रहे हैं. अच्छा, सैटेलाइट का पोजिशन सबको पता है बिकॉज यू हैव टू अनाउंस, यू हैव टू गिव ऑल द डिटेल्स बिफोर लॉन्च एज टू वेयर योर आपका सैटेलाइट कहाँ होगा. सबको पता है कि आपके सैटेलाइट कहाँ होंगे तो उसके हिसाब से आने वाले दिनों में अगर कहीं युद्ध होता है तो आपके सैटेलाइट्स को बचा के रखना भी जरूरी है. तो उसके हिसाब से हमको उस दिशा में भी यानी कि एरोस्पेस पार एक एरोस्पेस शक्ति बनना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है और वो सिर्फ एक छोटा सा कदम था, एक डेमोन्स्ट्रेशन था कि कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन था तो वो कर दिखाया, लेकिन उसी क्षेत्र में आगे बढ़ना जरूरी है. तो हमको ये होलिस्टिक व्यू देना पड़ेगा अगर हमको एक रीजनल पार करके हमको खड़ा रहना है तो जी. आने वाले दिनों में.
बिल्कुल, बहुत धन्यवाद नरोत्कर साहब, आपने इस विषय पर विस्तार से चर्चा की और क्योंकि जो रक्षा क्षेत्र है वो ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमेशा से ही तकनीकी एडवांसमेंट की जरूरत पड़ती रही है क्योंकि वॉरफेयर के तरीके बदलते रहे हैं. तो इसीलिए ये आवश्यक है कि जिस तरह से हम लगातार अपने हिसाब से तकनीकी क्षमता को बढ़ाते जा रहे हैं उसमें आगे बढ़ते रहें जिससे कि जो किसी भी तरह की चुनौती रक्षा क्षेत्र में हो उसका सामना करने के लिए हम सक्षम रहें. बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इस विश्लेषण के लिए.
थैंक यू कमल, बहुत धन्यवाद.
अभी आप सुन रहे थे रक्षा क्षेत्र में नए शिखर छूता भारत विषय पर चर्चा. इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक एयर वॉइस मार्शल SJ नानोदकर और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं. इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं. ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044.